ते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नम ब्रह्मणे देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा श्रीमद्भागवतम स्कंद नंबर 4 अध्याय 17 श्लोक नंबर 28 मनंतर चल रहा है ये 28 श्लोक। आप लोग थोड़ा से पास में आ जाएंगे थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में जो आते हैं आपका बीच में जब बैठ जाते हैं आपका माइंड उस साइड में चले जाता है, इसलिए सामने में आ जाना चाहिए। क्यों? भौतिक वस्तु के लिए हम आगे चलते हैं। अभी बाई चांस यहाँ पे महाप्रसाद मिलेगा ना, पीछे वाला पहले आएंगे, सही है? जैसे चरणामृत मंदिर में जब भगवान का अभिषेक खत्म होता है इमीडिएटली चरणामृत पाने के लिए लाइन है, नहीं बेल लाइन में बात, हर जगह पे लाइन में जाना पड़ेगा। हो सकता है नरक में लाइन जाना पड़ेगा, हो सकता है कृष्ण लोक में, फिर भी लाइन में जाना पड़ेगा। हर जगह पे लाइन, बेल लाइन कोई जगह पे नहीं। नरक जाने के लिए 3 द्वार है, लेकिन ये 3 द्वार के लिए भी 3 लाइन है। जिसी प्रकार आप किसी काउंटर में जाते हैं लेडीज लाइन लिखा होता है, जेंट्स लाइन होता है ना, लेडीज के अंदर जेंट्स नहीं घुसते और जेंट्स के अंदर लेडीज नहीं घुसता है, लाइन। इसी प्रकार आप लोग भागवत का टाइम पे सामने में आ जाना चाहिए, लेकिन महाप्रसाद के लिए पहले सामने। हरे कृष्णा। एवं मन्यो मयीं मूर्तिम् उतांतम् इव बिभ्रतम् प्रणंता प्राञ्जलिः प्राह महि संजात बेपथु। एवं मन्यो मयि मूर्तिम् कृतांतम् इव बिभ्रतम् प्रणंता प्राञ्जलि प्राह महि संजात बेपथु। एवं मन्यो मयि मूर्तिम् कृतांतम् इव बिभ्रतम् प्रणंता प्राञ्जलि प्राह महि संजात बेपथु। एवं मन्यो मयि मूर्तिम् कृतांतम् इव बिभ्रतम् प्रणंता प्राञ्जलि प्राह महि संजात बेपथु।
प्रणता
शब्दानुवाद एवं इस प्रकार मन्युमयी अत्यधिक रुद्ध मूर्ति रूप कृतंतम साक्षात काल मतलब जमराज इवा सदृश बिभ्रतम से युक्त प्रणता शरणागत प्रांजलि ही हाथ जोड़े प्राह कहा मही पृथ्वी ने संजात उत्पन्न बेपतु कंपन। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण भक्ति प्रदान स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जोर से लगाना चाहिए, जो कि गोलोक में प्रभुपाद बैठ के देख रहे हैं आप कितना जोर से प्रभुपाद का जयकार कर रहे हैं, क्यों प्रभुपाद का हाउस में है ना। श्री प्रभुपाद की इस समय पृथ्वी महाराज ठीक जमराज जैसे बन गए और उनका सारा शरीर अत्यंत क्रोधित प्रतीत होने लगा। दूसरे शब्दों में वे साक्षात क्रोध लग रहे थे। उनके शब्द सुनकर पृथ्वी कांपने लगा, कांपने लगी। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी। तात्पर्य भगवान दुष्टों के लिए साक्षात काल तथा भक्तों के लिए परम प्रिय भगवान रहते हैं। भगवद गीता 10:34 नंबर श्लोक में वर्णन करते हैं मृत्यु सर्वर हर्षाहम, मैं सबका सबको निगल लेने वाले मृत्यु हूं। श्रद्धा विहीन तथा न विश्वास करने वाले लोगों का जो भगवान के प्राकट्य को चुनौती देती है, भगवान उनके समक्ष काल रूप में प्रकट होकर उद्धार कर देंगे। उदाहरण तक हिरण्यकशिपु ने भगवान की सत्ता को चुनौती दी तो भगवान उससे नृसिंह देव के रूप में मिले और उसका वध कर दिया। इस प्रकार पृथ्वी ने महाराज पृथु को साक्षात काल के समान देखा और साक्षात क्रोध के रूप में भी, इसीलिए वह कांपने लगी। भगवान की सत्ता को किसी भी परिस्थिति में कोई चुनौती नहीं दे सकता। श्रेयस्कर यही होता है कि उनकी शरण ग्रहण की जाए और सदैव के लिए उनका संरक्षण प्राप्त किया जाए। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुन मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामेहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादन सहगना ललिता श्री विशाखा नितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते पेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। कितना दिन से ये चैप्टर चल रही है, चैप्टर का शीर्षक है महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। कुपित होना मतलब क्रोध करना, गुस्सा होना, दोनों तो एक ही है। क्रोध की कहां पे आता है, क्या कारण से क्रोध आता है, पहले तो आप सुन चुके हैं, लेकिन आज का जो श्लोक है ज्यादा से ज्यादा किसका ऊपर, ज्यादा से ज्यादा क्रोध का ऊपर वर्णित किया गया है। तब क्रोध कहां से आता है, क्रोध का प्राकृतिक स्थल कहां, भगवद गीता में वर्णन आता है, क्या वर्णन आता है वो श्लोक से चालू करेंगे, वो भी क्रोध वहां से आता है। लेकिन जब धाय तो विषयान पुंस, वो क्रोध है, हाँ जी हाँ, बस काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण समत्व, उसका प्राकृत स्थल कहां हो गया, रजोगुण से सृष्टि हुआ। तब यहां पे कैसा मेंशन करेंगे, क्या पृथ्वी महाराज के अंदर रजोगुण था, कैसा इसको हम समाधान करेंगे, क्योंकि क्रोध हां पृथ्वी महाराज के अंदर, लेकिन क्रोध और दूसरा जगह से प्रकट होता है, दूसरा जगह क्या है, इच्छा। इच्छा पूर्ति नहीं होगा तो फिर क्या होगा, क्रोध आएगा। तब यहां पे वर्णन आता है पृथ्वी महाराज का इच्छा था, क्या इच्छा था, पृथ्वी को चलाने के लिए, लेकिन राजा को पालन करने के लिए, पृथ्वी महाराज जो राजा थे ना, राजा को चलाने के लिए, तो पृथ्वी महाराज पृथ्वी का ऊपर इसीलिए क्रोध किए, क्योंकि पृथ्वी हर चीज नहीं दे पा रहा, इसीलिए पृथ्वी महाराज क्रोध हुए। दो कारण, एक ही हुआ इच्छा से और दूसरा है रजोगुण से प्रकट होता है क्या, क्रोध। लेकिन भगवान मतलब पृथ्वी महाराज जो है वो तो भगवान का सत्यावेश अवतार है, देखा जाएगा तो भगवान फिर कहां से क्रोधित होते हैं, भगवान क्रोधित होते हैं, सांसारिक लोग को मालूम नहीं पड़ता है, सांसारिक लोग बोलते हैं आप भक्त बन गए, भक्त बनने के बाद फिर आप ऐसा क्रोध करते हैं, भक्त भी ये शिक्षा मिलता है, भक्त भी क्रोध करेगा, लेकिन कहां पे करना है कहां पे नहीं करना ये शिक्षा। जब भगवान का दोष और भक्त का कोई दोष देखता है तब वहां पर भक्त क्रोध करेगा, ये निश्चिंत है। इसलिए भगवान भी क्रोधित होते हैं, जहां पे भक्त के लिए परेशानी आएगा तब जाके भगवान वहां पे क्रोध करेंगे। इसलिए भगवान इसी धरती में जब आते हैं, ये धरती पर जब भगवान आते हैं प्राकट्य होते हैं तब एक ही उद्देश्य के लिए, वो उद्देश्य क्या है, भगवद गीता का हां जी चार अध्याय श्लोक नंबर 8 में वर्णन है, क्या है, तीन काम एक ही साथ में करते हैं, तीन काम एक ही साथ में करते हैं, इसलिए एक मेन उद्देश्य होता है साधु को रक्षा करना, परित्रणाय साधुनाम विनाशय च दुष्कृतम धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामी जुगे जुगे। तीन काम क्या है, पहले काम हो गया साधु को रक्षा करना, परित्रणाय साधुनाम विनाशय च दुष्कृतम दुष्ट लोग को विनाश करना और धर्म को स्थापना करना, ये तीन काम एक ही साथ में करने के लिए आते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य होता है साधु को रक्षा करना, मेन उद्देश्य है साधु को, साधु को जहां पे भक्त को जहां पे परेशानी आ गया भगवान वहां पे प्रकट हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद यहां पे मेंशन किए हैं, क्या मेंशन किए, हिरण्यकशिपु के बारे में, हिरण्यकशिपु इतना घमंड, इतना गर्व, इतना दम्भ था, और उन्होंने ब्रह्मा जी से हर बार मांग लिया, लेकिन एक ही व्रत नहीं मांग पाया, लेकिन वो व्रत ब्रह्मा जी भी नहीं दे पाए। कौन सा व्रत? हाँ जी, अमर वर। क्यों? ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं है, तो ब्रह्मा जी अमर वर कैसे दे सकते थे? इसीलिए हिरण्यकशिपु को मना किया, हिरण्यकशिपु को मना किया, मैं अमर वर नहीं दे सकता हूं, आप और कुछ वर मांगिए। तब हिरण्यकशिपु अलग अलग वर मांगने लगा। हर वर मांगने के बाद हिरण्यकशिपु का मन में क्या विचार आया? मैं अमर हो गया। बहुत सर आप लोग कितना बार भी भागवत सुने हैं, लेकिन इसमें और एक ही छोटी से बात आता है। अब देखो हिरण्यकशिपु बहुत सारा वर मांगा, क्या क्या? ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बाहर नहीं, अंदर नहीं, है कि नहीं? जल में नहीं, स्थल में नहीं, फिर कोई अस्त्र शस्त्र द्वारा कोई मार नहीं सकता, दिन में नहीं, रात में नहीं, हाँ जी, मनुष्य में नहीं, पशु में नहीं। सारा बार मांग लिया, और एक ही बार मांगा था, किस मालूम है? 12 महीना का अंदर में ही नहीं। इसलिए भगवान एक ही महीना फिर निकाले, कौन सा मास? अधिक मास, पुरुषोत्तम, जिसका नाम भगवान स्वयं अपना नाम से इसको नाम नामित कर दिए। इसलिए कहते हैं भगवान कृष्णा लीला पुरुषोत्तम है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है, लेकिन स्वयं जगन्नाथ पूर्ण पुरुषोत्तम है। स्वयं अपना का नाम से अपना धाम का नाम दिया, स्वयं पुरुषोत्तम। तब इसी नाम से एक ही महीना का नाम पुरुषोत्तम मास, जिसको मौल मास कहा जाता है, जिसको अधिक मास में वर्णित किया जाता है, वो आता है। उसी महीने में हिरण्यकशिपु का क्या हुआ था? प्रभु स्वयं प्राकट्य हुए नरसिंह का रूप में होके हिरण्यकशिपु को मारे। ये कहने का अर्थ है भगवान यहां पे क्रोधित क्यों है? क्योंकि प्रहलाद महाराज को बहुत परेशानियां, क्योंकि पिताजी पुत्र को बहुत परेशानियां में डाल रहा है, तो भगवान सहन नहीं करते, इसलिए भगवान को क्रोधित होना पड़ेगा और क्रोध आता है। चलिए ये पृथु महाराज तब क्रोधित हुए जब पृथ्वी गाय का रूप ले लिया था। जैसा गाय का रूप लेने का बाद तो वो गाय को सब कुछ दिलाया, खिलाना पिलाना सब कुछ, फिर भी वो दूध नहीं दे रहा है। कोई भी व्यक्ति गुस्सा होगा नहीं होगा? ये तो नॉर्मल की बात है। भौतिक जगत में कोई व्यक्ति हर दिन कुछ सेवा कर रहा है और सेवा का कुछ फल नहीं मिल रहा है तो क्या बोलेगा? एक एक लोग होते हैं, आप किसी प्रचार में आप जाएंगे तो मालूम पड़ेगा, बहुत सारे लोग होते हैं बोले देखो मैं 10 साल से इसे मंदिर गया, 10 साल से मैं मंदिर जा रहा हूं। अरे किसके लिए? कुछ ना कुछ उसका इच्छा उद्देश्य मतलब कामना रहती है, उसी के लिए वो 10 साल से कंटिन्यू जा रहा है। लेकिन वो इच्छा पूर्ति नहीं हुआ तब क्या होगा? उसका अंदर गुस्सा इतना क्रोधित हो जाता है, जाएगा वहां पे भी व्यक्ति कोई दूसरा कोई जाएगा ना, उसको बोलेगा तुम उधर मत जाओ, हमारा कुछ नहीं हुआ। वो भी ऐसे लोग बोल देते हैं, क्योंकि उनका इच्छा था। जब तक इच्छा पूर्ति नहीं होता है उसका क्रोध बढ़ता है। और यहां पे वही हुआ, पृथु महाराज गाय का रूप में दिए और उसका सारा कुछ लालन पालन करने का बाद फिर वो दूध नहीं दिए। प्रजापालक है, जो राजा होते हैं वो प्रजापालक होते हैं, प्रजापालक होने का नाते उन्होंने नहीं दिए। तब यहां पे श्री प्रभुपाद मेंशन करते हैं पृथु महाराज ठीक जैसे जमराज का रूप बन चुके थे, जमराज जैसे बन गए थे, उनका सारा शरीर अत्यंत क्रोधित हो गया था, पूरा घोषा मोड़ में। इसको कहते हैं पहले घोषा कहां से आता है? पहले वचन से, पहले बातचीत चलता है, बाच बेग से पहले घोषा चढ़ता है। बातचीत करते करते व्यक्ति घोषा हो जाता है, वो चीज को सफल नहीं कर पाएगा तब इमीडिएटली घोषा हो जाएगा। पहले बाच बेग से घोषा सृष्टि होता है, क्रोध सृष्टि होता है बाच बेग से। बाच बेग होने का बाद फिर कहां से सृष्टि होगा? हाँ जी, आग से। मतलब आग से मतलब पहले मानसिक स्तर पर हो गया, इसलिए बोलते हैं बाच बेग मनस क्रोध बेगम। बाच बेग होने का बाद फिर मानसिक स्तर पर आएगा जब वह आंख लाल होगा, ये मन के अंदर वो स्फूर्ति होगा, मानसिक स्तर में वो सोचते रहेगा, वो व्यक्ति मेरा को ये बोल दिया, वो व्यक्ति ये कर दिया, वो हो गया, वो मानसिक स्तर पर सोचते रहेगा। तो वह मानसिक स्तर पर होने का बाद फिर क्या होगा? शारीरिक स्तर पर आ जाएगा, हाथ पैर फिर जान पूरा फाइटिंग शुरू हो जाएगा। और उसी अवस्था में ये पृथ्वी महाराज का बात से जैसा चल रहा है, पृथ्वी महाराज पृथ्वी के लिए क्या बन चुके थे? जमराज बन चुके थे। कहने का अर्थ को समझिए, क्योंकि पृथ्वी महाराज पहले समझाया, किसको समझाया? पृथ्वी माता को समझाया, माता को समझाया, लेकिन वो अभी तक भी नहीं समझा, फिर आगे आएगा। ये जो श्लोक है ये स्वयं पृथ्वी महाराज का ये लास्ट श्लोक है, इसका बाद है माता पृथ्वी, हाँ वो कहना शुरू करेगा। इसलिए कहते हैं ये लास्ट में बताते हैं, जब उन्होंने जमराज स्वरूप को देखा, पृथ्वी महाराज को स्वरूप को जमरूप स्वरूप देख लिया, तब पृथ्वी क्या हो गया? शरीर कांपते हुए हाथ को जोड़कर नतमस्तक हो गया। इसलिए कहते हैं भगवान भक्त के लिए कमल का फूल है, और वही प्रभु भगवान कृष्ण अभक्त के लिए क्या है? आग है। आप लोग दशम स्कंध भागवत में पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, जब अघासुर अपना मुख खोल कर बैठा था तब सारा ग्वाल बाल सोचे ही वो हमारा खेलकूद करने का मैदान है, तब सारा ग्वाल बाल क्या किए? अघासुर का मुख में चले गए। तो कृष्ण पीछा, क्योंकि सुपर हीरो है भगवान कृष्ण, पीछे रहकर देख रहे हैं क्या हो रहा है लीला। तब मुख का अंदर जाने का बाद गर्भ का अंदर चले गए, अघासुर का पेट का अंदर जाने का बाद सबका क्या हो गया? ग्वाल बाल का मृत्यु हो चुका है। तो भगवान कृष्ण जाते हैं, जब जाके अघासुर का कहां पे लग गया? गले में लग गया। गले में लगने के बाद है अघासुर को क्या होने लगा? श्वास ले नहीं ले पाया और जलन होने लगा। तब जलने होने का बाद है अघासुर का मृत्यु हो गया, लेकिन भगवान का दृष्टिपात से ग्वाल बाल को क्या किए? जीवित कर दिए। जीवित करने के बाद फिर अघासुर का पेट से निकाल दिए, बाहर आ गए। ये सोच लीजिए, भक्त के लिए शरणागत भक्त का रक्षक है प्रभु, और जो शरणागत नहीं है उनके लिए प्रभु आग बन जाते हैं। भक्त के लिए भगवान कमल का पुष्प है, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज के लिए भगवान कमल का पुष्प बन चुके हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु के लिए पूरा आग है। फिर भी स्वयं लक्ष्मी भी ऐसा कभी दृश्य नहीं देखे, जगत जननी कभी भी ऐसा रूप नहीं देखे, नरसिंह का रूप बोले ऐसा रूप में नहीं देखा, वो भी डर गए पास नरसिंह देव का पास आने के लिए, शांत कराने के लिए देवता लोग भी। लेकिन जब प्रहलाद महाराज पास में आते हैं तब स्वयं नरसिंह देव हाथ में लेके फिर गोद में बैठा के फिर क्या करते हैं? ओष्ठ को नहीं चाटते हैं, पहले उनका सिर को चाटते हैं। इसलिए तो हम लोग कभी 10 साल 20 साल के बच्चे कभी अमेरिका में है, कभी बच्चे को हमें देखा नहीं, जब बच्चा आता है इंडिया आता है एयरपोर्ट में उतरते हुए हम जब मिल लेते हैं इमीडिएटली गोद में लेकर क्या करते हैं? चुंबन देते हैं। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज को स्वयं प्रभु गोद में लेके नरसिंहदेव चाटते हैं। तो भगवान भक्त के लिए क्या बन जाते हैं? कमल का फूल बन जाते हैं, और वही भगवान अभक्त के लिए आग बन जाते हैं। अब क्रोध आना यह स्वाभाविक है, जब इच्छा पूर्ति नहीं होगा तब क्रोध आना स्वाभाविक है। बहुत सारा चीज इसमें आपको चर्चा करके कह सकते हैं, लेकिन समय का स्वल्प का अनुसार चर्चा किया जाएगा। एक ही कहा जाता है साधु का ऊपर, गंगा पाप को नाश करता है, चंद्रमा ताप को नाश करता है, लेकिन कल्पतरु दीनता का नाश करता है, लेकिन एक साधु, एक महात्मा, एक भक्त दीन ताप और पाप को संपूर्ण नाश कर देता है। इसलिए कहा जाता है शरणागत भक्त का रक्षक है प्रभु, और शरणागत रक्षक का रक्षक जो है जो साधु लोग होते हैं, साधु लोग पाप से और ताप से और दीनता से मुक्त कर देते हैं। इसलिए किसका शरण में जाना चाहिए? साधु का शरण में जाना चाहिए। चलिए, पृथ्वी महाराज का पास स्वयं नतमस्तक होके पृथ्वी हाथ जोड़ने लगा, तो काल का जो श्लोक आएगा उसमें आप सुनते रहेंगे क्या क्या वो बोल रहा है, पूरा शरणागत होके बोल रहा है। और दूसरा अर्थ भगवद गीता में श्री प्रभुपाद मेंशन करते हैं, जो कि मृत्यु सर्वहरहरचाह। भगवान बोल रहे हैं मैं सबके लिए काल बन जाता हूं, सबके लिए काल बन जाते हैं। जब तक भगवान का भक्त का नहीं बनेगा, जब भगवान का शरणगत नहीं होगा, तब उसके लिए भगवान वहां पे क्या बन जाता है? काल बन जाता है। जैसा बताया अभक्त के लिए भगवान आग बन जाते हैं, ये गीता में मेंशन है। इसलिए हमें क्या बनना चाहिए? ड्रेस पहनने से क्या भक्त बन जाएंगे? हाँ जी, मंदिर आने से क्या भक्त बन जाएंगे? सुबह उठने से क्या भक्त बन जाएंगे? हाँ जी, दंडा लेने से क्या सन्यास बन जाएंगे? बोलिए। भक्त इतना आसानी नहीं है। हम सोचते हैं और मन में हमारा गर्व आता है, मैं इतना साल का भक्त हूं, हमें सोचते हैं, लेकिन हमें भक्त एक ही कदम पर, एक ही चरण पर, भक्ति का जो एक ही कदम है वहां तक हमें पहुंचा नहीं। कहते हैं भक्ति, भव को कैसा लिखते हैं आप लोग हिंदी में कैसा लिखते हैं? आप समझिए, भव का जो दंडा होता है ना, जो दंडा होता है वो दंडा को हमें पकड़ा नहीं अभी, तो क्या हमारा भक्ति होगा? अभी तक हम बोलते हैं हमें 20 साल से है, 50 साल से है, 30 साल से है, भक्ति भक्त का संग में मिलता है, और ऐसा भक्त का संग करना पड़ेगा तब जाके भक्ति प्रकट होगा। हजार साल से हमें भागवत सुने, हजार साल से ऐसा ड्रेस पहने, हजार साल से हमें मंगलारती अटेंड करें, फिर भी भक्ति जागृत नहीं हो पाएगा। एक ही भक्ति जागृत होगा जब हमें गुरु का निर्देश को हमें फॉलो करके, गुरु का आदेश को फॉलो करके, गुरु जिस ही रास्ता में चल रहा है उनका पीछा करके हमें चल रहा है, तब निश्चिंत हमें कहां पहुंच जाएंगे? कहां पहुंच जाएंगे? दिल्ली में, पंजाब में, कहां पहुंच जाएंगे? कोई तो नहीं बोल रहा है, भगवत धाम, कृष्ण लोक, वैकुंठ लोक। कहने का अर्थ, इसलिए मैं इसको क्यों मेंशन किया, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं क्या मंगलारती जाने से क्या भगवान मिल जाएंगे? हम उनको एग्जांपल देते हैं, मंगलारती जाने से भगवान नहीं मिलते हैं, मंगलारती में शुभ सूचक इतना ही है, जब भगवान स्वयं शुभ ब्रह्म मुहूर्त में अपना असली के रूप दर्शन दिलाते हैं। दिन भर तक तो है, लेकिन सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सुबह के टाइम पे हमें प्रभु पहले दर्शन करते हैं, क्योंकि हमारा जो दिनचर्या है ना, दिन का पहले कदम कहां से शुरू होता है? प्रातः मुहूर्त से। इसीलिए सुबह का आरती हमें दर्शन करते हैं, और सुबह उठ के पहले प्रभु को दर्शन करते तब हमारा दिनचर्या क्या होगा? मंगलमय होगा। इसलिए यात्रा करने का पहले हर व्यक्ति, आप यात्रा करने का पहले कोई छोड़ने के लिए आपको जाता है तब क्या बोलता है? आपका यात्रा, यात्रा करने का पहले, ऐसा नहीं कि यात्रा से पहले आने का बाद बोलता है क्या? यात्रा करने का पहले। इसलिए सुबह का जो आरती होता है, सुबह प्रथम मुहूर्त में हम प्रभु को दर्शन कर लिया तो वह हमारा दिनचर्या क्या होगा? मंगलमय होगा, हमारा मन भी शांत रहेगा और प्रभु का भक्ति में लगेगा। ये कहने का अर्थ है। नहीं तो सुबह सुबह मुर्गा भी उठ जाता है, इतना मुर्गा सुबह सुबह उठते है, हम तो 3 बजे नहीं उठते, वो तो 2:30 बजे जाग जाते हैं, तो भगवान को प्राप्त कर ले सकते थे। ये कहने का अर्थ नहीं है। कहने का अर्थ ये है, प्रातः मुहूर्त में प्रभु को दर्शन करना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अभी का जो समय चल रहा है, अभी का समय का ऊपर बहुत एक चीज मेरा को मिला किसी जगह पे, मैं इसको आप थोड़ा से मेंशन करने के लिए, क्यों आज का श्लोक में सिर्फ एक क्रोध था और शांत भाव होके प्रभु का शरण में आना, ये 2 चीज का ऊपर था। आप लोग को क्रोध का बारे में तो बता दिया कैसा क्रोध होता है और कहां पे क्रोध को पुट करना होता है, भक्त को क्रोध कहां पुट करना होता है। क्या ये एक गीत है ना, क्रोध भक्त दोषी जने, ये एक भजन आता है ना, क्रोध भक्त दोषी जने, भक्त का कोई दोष देखता है वहां पे क्रोध करना पड़ता है। इसलिए हनुमान जी क्रोध किया, किया ना, कैसा किया आप लोग सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन हनुमान जी बहुत विद्वान है, इतना ज्ञानी है, लेकिन फिर क्रोधित क्यों हुआ? शरण रखे का भक्त को स्वयं जगत जननी माता को स्वयं रावण ने उठा लिया था, उठाकर कहां पे रखा था? अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका में जब रखा था, पेड़ का नीचे माता सीता बैठ के क्या कर रहा है? श्री प्रभु का चिंतन कर रहा है, प्रभु राम का चिंतन कर रहा है, और प्रभु को स्वयं अपना कहां से, दिल से दर्शन कर रहा है और प्रभु का चिंतन कर रहा है। तो हनुमान जी को स्वयं राम ने भेजा पता लगाने के लिए। तो पता लगाने के लिए हनुमान जी क्या करना पड़ा फिर? फ्लाइट में बैठ कर गया, किस में बैठ कर गया? हाँ जी, चिल्लाना लगाया, कैसा लगाया? किसका आश्रित हुआ? प्रभु का नाम का आश्रित होके छलका लगाया, समुद्र पार कर लिया। पार करके कहां पहुंच गया? लंका में पहुंच गया। लंका में पहुंच के हर जगह ढूंढने लगा, ढूंढ के फिर कहां पहुंच गया? अशोक वाटिका में पहुंच गया। अशोक वाटिका में पहुंच के जो पेड़ था, वो पेड़ का अंदर क्या हो गया? बैठ गया, चिड़िया जैसा बैठता है वहां बैठ गया। कैसा बैठा? छिप छिप के बैठा है, किसको जैसा नहीं दिखाई देगा। और उसी टाइम पे रावण आया। रावण आके सीता को बहुत, क्या शब्द, इतना मतलब बोला जाएगा तो गाली मार रहा था, ये कहा जाएगा ना, इतना बुरा शब्द, अपशब्द कहने लगा। तब वो सारा चीज हनुमान जी का कंप्यूटर में क्या हो गया था? फिट हो गया था। कंप्यूटर समझ रहे हम लोग, हर व्यक्ति के पास तो कंप्यूटर आ गया ऑलरेडी। इसी प्रकार कंप्यूटर को कहते हैं मेंटल, हमारा गुरु महाराज बोलते हैं, तो ये जो माइंड है, दैट इज कंप्यूटर माइंड। क्योंकि बहुत सारे लोग का माइंड के अंदर कम से कम हजार हजार मोबाइल फोन नंबर याद हो जाता है इसको, ये कंप्यूटर माइंड। तो सारा कंप्यूटर माइंड में हनुमान जी सब याद कर, सुनते सुनते सब याद कर लिया। तब जब रावण वहां से हटकर चला गया तब हनुमान जी एक गाना गाया, तो गाना जब गाया राम का ऊपर, तब गाना जब गाया तब सीता जी क्या कर रहे हैं, चार तरफ देख रहा है और सोच रहा है कोई तो है नहीं, मैं तो अकेली हूं, कहां से ये गाना आ रहा है, राम का शब्द कहां से आ रहा है, चार तरफ देख रहा है, वो आश्चर्य हो रहा है, वो सोच रहा है मेरा कोई भूत नहीं लग गया ना, मैं अभी स्वप्न नहीं देख रहा हूं ना, चार तरफ देख रहा है। तो फिर हनुमान जी नीचे उतर जाते हैं, तो उतर के तो पहले क्या करता है, प्रणाम करता है। प्रणाम करने का टाइम पे सीता जी भी डर गया, हो सकता है कोई, हाँ जी, कोई मायावी राक्षस नहीं है ना, छल छपट करके आया नहीं ना, वो ऐसा सोच के सीता जी क्या हो गया, डर गया। सीता डरने का बाद है, तो हनुमान जी अपना सारा सारा अपना पुटली पुटली लेकर आया था ना, वो पुटली खोल के देता है और सब कुछ बताता है, राम का बारे में सब कुछ बताता है, सब बताने के बाद तब सीता जी का विश्वास होता है, पूरा फेत हो जाता है। पूरा फेत होने का बाद फिर माता सीता और हनुमान जी का साथ वार्तालाप होता है, दोनों का दोनों वार्तालाप होने का नाते हैं, फिर हनुमान जी विदाई लेते हैं। विदाई लेने का टाइम पे बोले बहुत जोर से क्या लग गया, अभी तो टाइम ही है, अभी 10 मिनट हमारा बाकी है, बोला बहुत जोर से हमको भूख लग गया, हम थोड़ी से ये जो ये वाटिका में आए थे, ये वाटिका में बहुत अच्छा अच्छा क्या देख रहे आए, फल देख रहे आए और खाने का बहुत अच्छा विचार है, इसलिए आपसे मैं विदा लेकर जाता हूँ, थोड़ा भोजन करके फिर निकल जाऊंगा, अभी हमारा 9 बजे भोजन करने के बाद है, फिर हमें अपना अपना, हाँ जी, घर में चले जाएंगे, सेवा में चले जाएंगे, जो भी है। उसी प्रकार हनुमान जी सीता माता से विदा लिया, विदा लेने के बाद क्या क्या अशोक वाटिका में सब देखते रहा, कहाँ पे आम है, कहाँ पे केला है, कहाँ पे ये है, बहुत अच्छा अच्छा सुस्वाद फल को आस्वादन किया। और अशोक वाटिका में जितना सब चौकीदार थे सब क्या थे, सब सोए थे, जिस प्रकार हमारा भी गार्ड लोग सो जाते हैं ना, उसी प्रकार वो भी सोए थे, जैसा वसुदेव लेकर गया था, हाँ जी, कृष्ण को मथुरा से कहां गोकुल में पहुंचाया, उसी टाइम में चौकीदार लोग क्या किए थे, सोए थे, ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक सिस्टम, भगवान यहाँ पे सब ऑटोमेटिक स्विच दबा रहा है क्या करने के लिए, तो यहाँ पे चौकीदार सब सोए थे, तो हनुमान जी सब धीरे धीरे तोड़ने लगा, तोड़ के खाने लगा, जब पेड़ उठा के फेंकने, क्योंकि हनुमान जी इतना भारी था, पेड़ सारा गिर रहा, तब ये लोग तो सोए है, इमीडिएटली जाके क्या हो गया क्या हो गया, तब जागने लगा, तब देखे इतना विराट बहुत बड़ा बंदर है, ये सारा अशोक वाटिका को ध्वंस कर रहा है, तब क्या करना, उसका साथ लड़ाई की है, लेकिन लड़ाई में हार गए। और हनुमान जी बोलते हैं, बोले तुम्हारा ऊपर जो इंचार्ज है, कहने का अर्थ है मतलब आपका प्रभु को बुला कर लेगा आ जाए, मेरा को लेकिन भूख लग रही है, खाना है, अभी पहले खाने दो, तुम खाने में क्यों बाधा सृष्टि कर रहे हैं, खाने में बाधा सृष्टि नहीं करना, मैं खाने का बाद फिर मेरा साथ बातचीत करो। तो फिर उनका साथ इतना संघर्ष होता है, संघर्ष होने का बाद फिर वो जाता है, जाने का बाद फिर सारा कुछ जाने का टाइम पे क्या करता है, कौन सा लीला किया, तो वह हनुमान जी ये तो जात में बंदर है, तो बंदर का शरीर में जितना आसक्त नहीं है, लेकिन ज्यादा आसक्त किसमें है, पूछ में, जितना शरीर में आसक्त नहीं होता है, पूछ में ज्यादा आसक्त है। जिसी प्रकार माता लोग शरीर में जितना आसक्ति नहीं है, ज्यादा बाल के प्रति ज्यादा आसक्त है, बाल को कैसा अच्छा डिजाइन बनाना है, और उसी प्रकार हनुमान जी अपना पूछ का प्रति आसक्त है। तो सारा लोग मन में क्या सोचे, बोले पूछ में आग लगा देंगे ना, उसका जो शौकीन का भाव है सब कट जाएगा, तो ये विचार करके तो क्या किए, हनुमान जी का पूछ में आग लगा दिया। और हनुमान जी का पूछ ये नहीं था, वो सोच रहे थे 2-4 फीट होगा, ये विचार किए थे, लेकिन हनुमान जी इतना पूछ लंबा किया, उसको पकड़ते पकड़ते मतलब कहा क्या बोला जाएगा, मतलब कितना दूरी तक जाना पड़ा उनको, वो नहीं सोच पाए। मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक शटर होता नहीं ऐसा, स्प्रिंग 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 जैसा, इतना दूर आके और वहां इसमें जब आग लगा दिए हनुमान जी, तब उड़ने लगा, तब उड़ के सारा लंका को जला दिया। भक्त होने का नाते क्यों, भक्त के अंदर इसलिए क्रोध आया क्यों, भक्त का प्रति द्वेष किया, इसलिए लंका को जला दिया। लंका को जलाने का बाद लेकिन एक ही घर बच गया लंका में, किसका घर अब समझ लीजिए, इसी कथा में आता है। इसलिए भक्त के लिए भगवान कमल फूल बन गए, भगवान भक्त को सुरक्षा दे रहा है, भक्त के घर को सुरक्षा दे दिया। विभीषण का घर का सामने 4 चीज था, इसलिए भगवान मतलब वो घर आग से बच गया और सारा लंका मिट्टी में मिल गई। 4 चीज विभीषण का घर का सामने था, एक ही तुलसी का पौधा, दूसरा चक्र, तीसरा शंख और चौथा प्रभु का नाम। ये 4 चीज का कारण से विभीषण का घर बच गया। और लोग बोलते हैं भक्त बन गए, ड्रेस पहन लिया, भक्त बन गए, क्यों क्रोधित होते हैं? किसी जगह पे क्रोध होना है, किसी जगह पे क्रोध होना है, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है, ये सोचना चाहिए। किसी जगह पे भक्त का दोष देखा जा रहा है, कहां पे भगवान को निंदा हो रहा है, ये सारा जगह पे क्रोधित होना है, और जहां पे ये नहीं है वहां पे क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी कलयुग में क्या हो रहा है, कलयुग में आप देखिए, कपड़ा हो गया छोटा, शर्म कहां से आएगा? कपड़ा छोटा हो गया, शर्म आएगा? बेशर्म की कपड़ा पहन के आ रहे मंदिर। अनाज हो गया रासायन, स्वाद कहां से आएगा? भोजन हो गया, जो भोजन करते हैं वो हो गया डालडा घी, डालडा घी में ताकत कहां से आएगा? ताकत आएगा? फूल हो गया प्लास्टिक का, खुशबू कहां से आएगा? चेहरा जो है, चेहरा हो गया मेकअप का, रूप कहां से आएगा? शिक्षक जो है कलयुग का, शिक्षक हो गया ट्यूशन का, विद्या कहां से आएगा? प्रोग्राम, जितना सारा प्रोग्राम हो गया, सारा प्रोग्राम चैनल में, सारा प्रोग्राम चैनल में, संस्कार कहां से आएगा? इंसान हो गया पैसा का, दया कहां से आएगा? पानी हो गया केमिकल का, गंगाजल कहां से आएगा? संत हो गए स्वार्थ के, सत्संग कहां से होगा? भक्त हुए स्वार्थ के, भगवान कहां से मिलेंगे? इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तब क्या करना पड़ेगा? निस्वार्थ पर प्रभु का सेवा। फिर दूसरा अर्थ में बताते हैं, 2 मिनट सिर्फ ले रहा हूं। भगवान का स्मरण कैसा करना है? भगवान का स्मरण ऐसे करो जैसे अफीम जी अफीम के न मिलने पर अफीम का स्मरण करता है, ऐसा ही भगवान का स्मरण करो। फिर ऐसे करो जैसे मुकदमेबाज मुकदमे का स्मरण करता है, मुकदमा का स्मरण करता है, ऐसा ही भगवान का स्मरण करो। जैसे जुआरी जुआ का स्मरण करता है, ऐसा ही भगवान को स्मरण करो। जैसे लोभी धन का स्मरण करता है, उसी प्रकार भगवान को स्मरण करो। जैसा कामी कामिनी का स्मरण करता है, उसी प्रकार भगवान को स्मरण करो। भगवान चिंतन से एक क्षण भी जैसा नहीं हटना है। इस प्रकार कितना सारा चीज है, जिस प्रकार कहते हैं जैसे ताजे पुत्र वियोग हो जाता है, मतलब जन्म हुआ बच्चा इमीडिएटली मर जाता है, उसी प्रकार ताजे पुत्र का स्मरण, उसी प्रकार भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसे नवीन विधवा अबला अपने मृत पति का स्मरण करता है, इसी प्रकार भगवान को स्मरण करो। चलिए, भगवान का स्मरण एक क्षण भी कैसा नहीं बोलना, ये सारा एग्जाम्पल दिया जाता है। किस प्रकार एक लोभी धन के लिए कितना चिंतन करता है, उसी प्रकार हमको प्रभु को प्राप्त करना है, प्रति मुहूर्त में, प्रति क्षण में, प्रति सेकंड में चिंतन होना चाहिए, तब जाके हमें प्रभु का धाम को और प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो शरणागत भक्त होने का नाते पूरा सिलेंडर कुछ नहीं, थोड़ी सी इच्छा रह गया, इच्छा मतलब थोड़ी से, जैसा रेत होता है, रेत का एक ही कण भी इच्छा रह गया, फिर भी प्रभु का धाम को नहीं जा पाएंगे। फिर भी दरवाजा के पास जाके, प्रभु का जो दरवाजा है जहां पे लिखा है सुखाड़य, वह सुखाड़य का जो दरवाजा है वहां से फिर वापस आना पड़ेगा। थोड़ी से कुछ इच्छा रह गया तब भी, इसलिए इच्छा रहित होके, कामना रहित होके क्या करना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ। तब अभी थोड़ी समय का बाद हम लोग, थोड़ी समय नहीं थोड़ी दिन का बाद जगन्नाथ कथा चालू करेंगे। आप लोग को सहमत है सुनने के लिए, क्योंकि जगन्नाथ कथा बहुत सारे भक्त लोग पूछ रहे हैं नवकलवर के बारे में बताने के लिए, क्योंकि नवकलवर इसी साल में है, अभी ज्यादा दिन भी नहीं है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 महीना का अंदर नवकलवर चालू हो जाएगा। सिर्फ 2 महीने का बाद है चालू होगा वहां पे जो प्रोग्राम सारा, लेकिन वहां पे कोई जाके 2 महीना रहता है सारा प्रोग्राम देख सकता है। और जून 2 तारीख से मंदिर बंद रहेगा, जगन्नाथ मंदिर ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता है जून 2 तारीख से। जुलाई 17 तारीख को ठाकुर जी का क्या होगा, नया शरीर दर्शन होगा, जिसको बोलते हैं नवकलेवर। जुलाई 17 तारीख को नवकलेवर और 18 तारीख को स्वयं जगन्नाथ किसमें बैठ के आएंगे, रात को। लेकिन 1.5 महीना तक ठाकुर जी, जिसको बोलते हैं अणसर घर में रहेंगे, अणसर मतलब बुकार में रहेंगे, दर्शन नहीं होगा। इसलिए आप, लेकिन वो जो पेड़ है दर्शन करना है तो पेड़ अभी रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, मिलेगा तब फिर सबके पास है, इंटरनेट में आ जाएगा, सब फेसबुक में आ जाएगा, टीवी में आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा, सुन सकते हैं। फिर आप जाना चाहते तो पहले से आप जैसा 2-3 दिन के लिए प्रोग्राम बनाकर जाके वो पेड़ को दर्शन कर सकते हैं। और अभी हो सकता है आप लोग को जैसा उत्साह करेंगे उसी हिसाब से कथा कहा जाएगा। नवकलवर बारे में सुनना चाहते हैं, नहीं भक्त चरित्र सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा भक्त चरित्र का बारे में तैयार किया हूं करने के लिए। और नवकलवर का बारे में होगा तो एक दिन नवकलवर का बारे में बता भी सकते हैं। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माँ सुभद्रा, भक्त रक्षक सुदर्शन चक्र की, श्री गौर निताई की, कृष्ण बलराम की, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधेश। कुछ बोलने का समय पर कुछ गलती बोल दिया कि ठीक बोला, हो सकता है आपको कैसा लगा होगा, लेकिन कुछ गलती होगा तो आप लोग आपका कृपा करके माफी कर दीजिएगा। वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।